नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 232 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक कल देर रात तक विधेयक पर चर्चा हुई। सदन ने कल मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी दे दी है, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है। इस बीच राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। इस कानून का उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा कर शासन में सुधार करना है। ये विधेयक मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार करेगा। विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाना है, जिसमें बेहतर वक्फ शासन और निर्णय लेने के लिए विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व हो। लोकसभा में कल चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई संबंध नहीं है और ये केवल वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड को समावेशी बनाना चाहती है और ये पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू नहीं होगा। किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है।
चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भरपूर इसमें प्रावधान किया गया है। अब सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा जो सारा स्टेट बोर्ड के साथ में लिंक होगा, लाइव होगा। वर्क प्रॉपर्टी का कंटिन्यूअसली रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, कंप्लायंस पूरा व्यवस्था करके हमने एफिशिएंसी को टारगेट दिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अल्प सेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना संचालित करता है। राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार के एक सवाल के जवाब में संसद में उन्होंने ये जानकारी दी। अनुप्रिया पटेल ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकारों के बीच निधियन साझाकरण पद्धति पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90-10 के अनुपात जबकि अन्य के लिए 60-40 के अनुपात में है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के चंबा, हमीरपुर और नाहन में 3 मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं और तीनों मेडिकल कॉलेज कार्यशील हैं। अनुप्रिया पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए हिमाचल को 144 करोड़ रुपए की कुल अनुमोदित लागत से एक मेडिकल कॉलेज में 17 पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बिलासपुर में एम्स की स्थापना की गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि 11 महीने की देरी के बाद मंडी में दिशा प्रो डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया है और सांसद के अधीन होने वाली दिशा की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने का भी कंगना रनौत के पास समय नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को सांसद होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करने की सलाह भी दी।
जो हमारी माननीय सांसद है मंडी से, तो हम तो उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर दुख की बात है कि जब से वो चुनी गई हैं, तब से वो मंडी संसदीय क्षेत्र से तो क्या पूरे हिमाचल प्रदेश से नदारद है। 2 बारी केवल वो मंडी में दिखाई दी, 1 साल में मंडी की जनता को उनके दर्शन जो है वो नहीं हुए। जो दिशा की बैठक होती है जिसमें सांसद ही उसकी जो है वो अध्यक्षता हर जिले में करती है, तो उसमें भी उनको बैठने का समय नहीं है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।